نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير پارا نمبر 17 آیات امہ دیکھیں گے کہ اس بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس روٹ سے کیا رکھا اور ہم اس سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور ایک ایک چیز کو ہم اپنے عمل کے لیے لیں تو ہمیں ہر چیز میں ہی بہت کچھ ملے گا۔ سورۃ انبیاء آیت نمبر 73 اور ان کو پیشوا بنایا کہ وہ ہمارے حکم سے ہدایت کرتے تھے اور ان کو نیک کام کرنے اور نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے کا حکم بھیجا اور وہ ہماری عبادت کیا کرتے تھے۔ اس آیت میں لفظ پیشوا یعنی آئمہ امام کی جمع ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو اچھے امام ہوتے ہیں جو اچھے لیڈرز ہوتے ہیں وہ اللہ کے حکم کے مطابق لوگوں سے کام لیتے ہیں۔ یعنی یہ آج ہمارے چھوٹے طبقے سے لے کے بڑے طبقے سیاست میں اور باقی چھوٹی چھوٹی فیلڈز میں یہی ہونا چاہیے کہ جہاں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں بڑا بنا دے ہمیں کوئی ذمہ داری دے دے تو ہم اس کام کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے کریں۔ پھر اگلی آیت ہے سورۃ الانبیاء کی آیت 92 ان ھذہ امتکم امتا واحدہ وانا ربکم فاعبدون یہ تمہاری جماعت ایک ہی جماعت ہے اور میں تمہارا پروردگار ہوں تو میری ہی عبادت کیا کرو۔ یہاں دیکھیے امتکم اور امت دو دفعہ یہ لفظ آیا ہے تو گویا کہ اس میں بات کیا ہے کہ لوگ شروع سے ایک ہی تھے ایک گروہ پہ تھے اور بعد میں مختلف ہوئے اور یہ کون سا گروہ تھا یہ کون سی جماعت تھی جو توحید پہ قائم تھی۔ تو شروع سے لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے توحید ڈالی ہوئی ہے۔ آج جتنے بھی لوگ شرک پہ آ جاتے ہیں یا اللہ کو نہیں مانتے تو ان کی فطرت کے مسخ ہونے کی یہ علامت ہے۔ پھر اگلی آیت سورۃ حج کی آیت 34 ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا ایک طریقہ مقرر کیا ہے تاکہ جو مویشی چارپائے اللہ نے ان کو دیے ہیں ان کے ذبح کرنے کے وقت ان پر اللہ کا نام لیں، بس تمہارا معبود ایک ہی ہے تو اسی کے فرما بردار ہو جاؤ اور عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ یہاں دیکھیے کہ امتوں کے لیے منسک کی بات ہے۔ منسک نسک سے ہے اور نسک کہتے طریقہ عبادت۔ یہاں جالنا کا لفظ بہت اہم ہے کہ عبادت کے طریقے وضع نہیں کیے جاتے بلکہ ان کو قبول کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی یہ نہیں کہا کہ تم عبادت کا طریقہ بنا لو پھر اس پہ عمل کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کا گھر بنا لیا تو کیا کہا تھا، ارینا مناسکنا، وہاں بھی یہ لفظ تھا تھوڑا سا فرق کے ساتھ کہ اللہ دکھا مجھے اب اپنے مناسک، طریقہ کار سکھا کیا کیسے کروں کہ مجھے اب بتا، گھر تو بنا دیا اب اس میں عبادت کیسے کرنی ہے۔ تو یہ آیت اس چیز کی بہت بڑی دلیل ہے کہ نیکی کے نام پہ چاہے ثواب کے نام پہ کسی نام پر بھی ہم کوئی نیکی کریں تو ہم خود سے نہیں کر سکتے جب تک اللہ اور اس کے رسول کا کوئی حکم ہمیں اس میں نظر نہ جائے۔ پھر اس کے بعد سورۃ حج کی آیت 67 ہے لِکُلِّ أُمَّتٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، ہم نے ہر ایک امت کے لیے ایک شریعت مقرر کر دی جس پر وہ چلتے ہیں تو یہ لوگ تم سے اس امر میں جھگڑا نہ کریں اور تم لوگوں کو اپنے پروردگار کی طرف بلاتے رہو بے شک تم سیدھے راستے پر ہو۔ کیا پتہ چلا، ہر ایک کی ایک شریعت ہے، لوگوں کے ساتھ بحثیں نہ کرو جھگڑے نہ کرو، اپنے رب کی طرف لوگوں کو بلاتے رہو اس کانفیڈنس کے ساتھ کہ تم سیدھے راستے پہ ہو۔ اسلام بہت ٹالرنٹ ریلیجن ہے، دوسروں کو ان کے طریقے پہ کام کرنے دیتا ہے لیکن خود کبھی ان کے طریقے پہ کام نہیں کرتا کسی بھی پریشر میں آ کر۔ اور اسی طرح سے اس میں ایک اور بات ہے کہ آپ لوگوں کو حق بات بتا دیں لیکن منوانا اور اس کے اوپر عمل کرنا نہ کرنا یہ ان کا کام ہوگا۔ تو یہ تھی آیات، اب چلتے ہیں آج کے ٹارگٹ پہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ ہمارے وقت میں نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ سورۃ انبیاء 17 پارے کی پہلی سورت ہے۔ اس سورت کا نام چونکہ انبیاء کرام کے نام پر ہے تو اس سورت میں انبیاء کرام کی مختصر سی باتیں ہیں لیکن خوبصورت بات اس کی کیا ہے کہ قرآن پاک میں میکسیمم دعائیں جو انبیاء کرام نے مانگی وہ اس ایک سورت میں ہم پڑھیں گے اور وہ دعائیں تو اصل میں ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بڑھاتی ہیں۔ مکی دور کی سورت ہیں اور یاد رکھیے کہ مکی دور کی جو سورتیں ہوتی ہیں ان کی آیتیں چھوٹی ہوتی ہیں لیکن آیتوں کا نمبر بڑا ہوتا ہے۔ جیسے शुरू में दरिया पतला होता है, फिर बीच में जाके चौड़ा होने लगता है। मदनी सूरतें जो हैं उनके अंदर डेप्थ बहुत होती है, लेकिन मक्की सूरतों में डेप्थ तो नहीं होती, लेकिन उसके अंदर किनारा एक होता है हक और बातिल का। तो मक्की दौर के आगाज की सूरतों में खास तौर पे हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा बात तौहीद पे होती है। इस पूरी सूरत में भी इंशाल्लाह हम देखेंगे कि अम्बिया कराम ने किस तरह से ये सारी चीजें की। और बाज लोग कहते हैं कि ये मदनी सूरत है, बाज कहते हैं मक्की है, बाज कहते हैं बरजखी है, यानी अल्लाह के नबी के हिजरत के रास्ते में नाजिल हुई थी, क्योंकि इसमें सजदा भी है और या अय्युहल्लज़ीना आमनू का लफ्ज़ भी सूरत में बहुत ज्यादा आता है। लेकिन आप देखेंगे कि सूरत का आगाज आपको बताता है कि सूरत का पैगाम क़यामत है, झलकियां हैं इसमें किस चीज की, कि लोगों जो जिंदगी तुम गुजार रहे हो ये बहुत जल्द खत्म होगी और फिर तुम अपने इंजाम को पहुंच जाओगे और तुम अपने रब को फेस करोगे। आइए देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम वहुम फी गफलतिन मौरिदून। करीब आ गया लोगों के हिसाब का वक्त और वो हैं कि गफलत में मुंह मोड़े हुए हैं। क्या बगफलत की वजह? मा यातीहिम मिन ज़िक्रि मिन रब्बिहिम मुहदसन इल्ला इस्तमऊहु वहुम यलअबून। इनके पास जो ताजा नसीहत भी अपने रब की तरफ से आती है वो इसको बतकल्लुफ सुनते हैं और खेल कूद में पड़े रहते हैं। लाहियतन कुलूबुहुम, और इनके दिल तो कुछ और ही चीजों में पड़े रहते हैं, दिलों में फिक्रें तो कुछ और ही हैं। क्या पैगाम है इस सूरत के आगाज का? गफलत के पर्दों को चाक करने वाली चीज हिसाब का फिक्र। हकीकत यह है कि जो जिंदगी हम मैं और आप गुजार रहे हैं ये एक चलती हुई घड़ी की तरह, आप उस वक्त से कोई फायदा उठा लें या ना उठाएं, घड़ी चलती रहेगी। आप अपने घर की रखी हुई किसी घड़ी को देखिए जिसमें टिक टिक की आवाज भी अगर आती हो तो आप इस बात को समझेंगे। आप उसको देखते ही रहे, हाय एक मिनट और गुजर गया, हाय एक मिनट और मौत के करीब हो गई, क्या फायदा होगा, घड़ी चल रही है। आप कहते नहीं नहीं मैं इसको चलने से रोकती हूँ, क्या करूं, मैं इसके सेल निकाल दूं, तो निकाल दीजिए, टाइम तो नहीं रुकेगा ना। इसी तरह मेरी और आपकी जिंदगी चल रही है। गेट मोर फ्रॉम लाइफ, मुझे इस आयत से हमेशा मोटिवेशन मिलती है और अल्हम्दुलिल्लाह इस पे बहुत सारे दर्स हैं। हिसाब से पहले इख्तसाब भी इसी में आता है, बीसियों के शायद इससे भी ज्यादा बार इसी एक आयत पे दर्स दिया हुआ है कि लोगों के हिसाब का वक्त करीब है। हमने ये आयत सुनी और हमें कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन अगर अभी रेडियो पे खबर आए फ्लडिंग हो रही है और सैलाब का रुख बिल्कुल रॉसवेल की तरफ है और पानी सारा अभी सड़कों पे भर जाएगा और घरों में घुस जाएगा, हम इसी तरह बैठे रहेंगे? हम ऐसे नहीं बैठेंगे, हम अपनी जगह से उछलेंगे कूदेंगे और हमें फिक्र, हम भागेंगे, गाड़ियों को निकाल लें, गाड़ी में कुछ ना हो ये ना हो, यकीन है ना। तो क्या एक रेडियो पे आई हुई खबर या फोन पे आए हुए एक अलर्ट का हमें अल्लाह के इस अलर्ट से ज्यादा खौफ है? आप देखिए कि खौफ इतना बड़ा मोटिव है कि इंसान को वो बात करने पे माइल कर देता है जिसके बारे में एक इंसान सोचता भी नहीं। बस अगर मिसाल आप सब रूम में आ जाए और मैं आपको कहूँ कि थोड़ी देर के लिए आप इन कुर्सियों पे खड़े हो जाएं, तो आप में से आधे लोग तो खड़े हो जाएंगे और आधे सोच में पड़ेंगे कैसे खड़ी हूं, गिर ना जाऊं, मैं क्यों कैसी लगूंगी, लोग मुझे देखेंगे, रिलक्टेंट होंगे आप। लेकिन इतने में बिलफर्ज एक छोटा सा चूहा आपको फ्लोर पे दौड़ता हुआ दिखे, बगैर देखे सुने आप कुर्सी पे खड़े हो जाएंगे, फिर आपको ये याद भी नहीं रहेगा कि आप कैसी लग रही हैं, फिर आपको ये भी नहीं याद रहेगा कि कुर्सी टूट ना जाए, क्योंकि आपको एक छोटी सी चीज दिख गई जिससे फिलहाल आपने बचना है, बाद की बात बाद में। तो क्या आखिरत का खौफ और आखिरत की पकड़ और हिसाब की बात इतनी भी अहम नहीं है? अगर हमारा इस आयत पर ईमान आ जाए ना तो हम अपने काम करने की स्पीड को दुरुस्त करते हैं। टाइम मैनेजमेंट में भी अक्सर मैं यही आयत चूज करती हूँ और इस पे बहुत सारे फिगर्स बताते हैं, मसलन 1 मिनट में इंसान क्या कुछ कर सकता है, 200 गज जमीन कवर कर सकता है अगर एक इंसान चलना शुरू करे। आपको भी यहां से चलने को मौका दिया जाए तो आप 200 यार्ड्स तक कम से कम चल सकते हैं 1 मिनट में। इसी तरह अगर किसी से कहा जाए कि बोलो तो 250 अल्फाज 1 मिनट में इंसान बोल लेता है, और 1 मिनट में खून सारे जिस्म का एक चक्कर लगा के वापस हमारे दिल में आ जाता है, और 1 मिनट में जमीन अपने महवर के गिर्द कितना लंबा चक्कर काटती है। तो इससे सोचिए कि ये जब कोई आपको बुलाए और आप कहते हो कि 1 मिनट आती हूँ जरा सब्र करूँ, वो 1 मिनट कितना कीमती होता है। तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि हम सबको वक्त की फिक्र लगा दें। फिर आप देखिए कि जिंदगी में हिसाब के मुख्तलिफ मरहले होते हैं। एक चीज आपने भी देखी होगी कि हिसाब का मजमून हमेशा मुश्किल लगता है लोगों को। क्यामत के दिन का हिसाब अगर सामने रखे तो वाकई उसमें बहुत है। कल कोई कहते कि क्यामत आ रही है, कोई आ जाए और कहे तुम्हें पता है कल क्यामत आ रही है, तो क्या हमारा आज का जो आखिरी दिन हमारी जिंदगी का गुजरेगा, क्या हमारे पिछले सारे गुजरे हुए दिनों जैसा होगा? हम तो तड़प तड़प के हो जाएंगे, किस तरह से हम भागेंगे? और याद रखिए कि क्यामत का करीब आना इस बात का यकीन दुनिया पर सब्र करना आसान कर देता है। क्या लेना इसको? इसी आयत पे वो वाक्य मैं अक्सर सुनाती हूँ कि एक सहाबी के पास माले गनीमत में जमीन के दो टुकड़े आए, तो कहा अच्छा मेरे पास दो आ गए हैं, वो दूसरा दोस्त है उसके पास कोई नहीं है, कहा एक टुकड़ा तुम ले लो। दिल कितना बड़ा, हम कहते दो है नहीं एक और हो जाए तो तीन ही बुरे कर दे, फिर बड़ा सा या बैकयार्ड बनाओ, बड़ा सा लॉन बनाओ और बीच में एक बड़ा सा घर बनाओ। कहा नहीं एक मेरे पास है एक तुम रख लो। जब उनको दिया तो उनका जवाब इससे भी हैरतनाक था, कहने लगे मेरे भाई आपका बहुत शुक्रिया लेकिन अब मुझे इसकी जरूरत नहीं रही। अभी क्यों जरूरत नहीं रही? कहा इसलिए कि आज की रात हमारे नबी के ऊपर एक ऐसी आयत नाजिल हुई जिसने इस दुनिया में हमारी रही सही ख्वाहिश और इस दुनिया में हमारी अट्रैक्शन कशिश खत्म कर दी। कहा वो कौन सी आयत है? कहा इक्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम वहुम फी गफलति मोरिदून। क्या वो क्या करते हैं? मैंने एक दिन के लिए टुकड़ा लेने देखी ना अपने घर बाय करना हो और आपको पता कि कल आप यहां से वापस जा रही हैं किसी जगह फॉर गुड, तो आप खरीदेंगे? आप कहीं कौन लिखत पढ़त में पड़े, कौन ये लाइबिलिटीज अपने ऊपर ले? आप नहीं लेंगे। तो जिसको इस दुनिया की नापायदारी का यकीन होगा वो कभी भी दूसरी तरफ नहीं आएगा। और आप देखिए कि इंसान हमेशा गिनता है, बचपन में ग्रेड्स गिने जाते हैं, हफ्ता कब आएगा, छुट्टी कब, कहते हैं फ्राइडे इतनी देर से क्यों आता है, संडे इतनी देर से क्यों आता है, फिर जरा से जवानी की नजरें शुरू होती हैं तो स्कोर होता है उसका कितना उसका कितना, जरा से और बड़े होते हैं तो अपनी उम्र फिक्र लग जाती है अब शादी कब होगी, और बड़े हुए तो जॉब कैसे, पैसे कितने कितने बराबर होंगे, फिर दुनिया, फिर जरा और बड़े हो तो दुनिया की आबादी क्या, और जरा से और बड़े हो तो सियासतदानों की गलतियां कितनी है, और उस पर बैठ के घंटों तबसरे करेंगे, और बुढ़ापे में तो इंसान गिनता रहता है अच्छा मैं पीछे क्या छोड़ के जाऊंगा। तो ये लाहियाती कुलूब की कैफियत को खत्म करना। तो आते हैं बेसिकली कि जिसमें वजह भी समझ आ गई और अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि वो हमारा गोल आखिरत को बना ले। जब हम किसी काम को करना चाहें तो यही सोचें कि वाकई हकीकत है। और आप देखिए कि अव्वल सुनते कितने हैं लोग इस किताब को, लेकिन जो सुनते हैं अल्लाह उनकी बात कर रहे हैं कि लस तमाऊ वहुम ये लबुन, तमाशों में कुरान पढ़ते हैं, खेल में पढ़ते हैं, तुम इतना पढ़ लो मैं इतना पढ़ती हूँ, ये कर लो वो कर लो। आज आप देखिए हमारे इस किताब से दूर रहने की वजह क्या है? दुनिया। आज इस किताब से दूर रहना हमारी मसरूफियत क्या है? रोजमर्रा की दिलचस्पियां। कैसे पता चले कि मैं गफलत में हूं कि नहीं? अपनी रूटीन देख ली, रोज क्या करती हूँ, जिसको अल्लाह लाहिया कह रहे हैं और खेल रहे हैं ये लोग, मुझे क्या हमारे काम हमारी जॉब्स हमारे बच्चे हमारे ये खेल ही तो है। आप देखिए कि दुनिया की डिग्री को पाने वाला तो सब कुछ छोड़ के जाता है, तो क्या दीन की डिग्री को पाने के लिए हम थोड़ा भी नहीं छोड़ते? जिस चीज की इंसान अहमियत समझता है ना उसके लिए फिर वो दौलत वक्त माल से सब कुछ लगाता है। तो अल्लाह ताला से दुआ करें कि वो हमारी गैर संजीदगी खत्म कर दे। आज उम्मत मुस्लिमा की बहुत बड़ी वजह जिसने उनको नॉन सीरियस कर दिया वो इसी आयत को अपने सामने नहीं रखना। आज अपनी जात को बड़ा करने के लिए हम काम करते हैं, क्वालिटी अपने नाम पे दिखाते हैं, हम सीधा नहीं होते क्योंकि हमें अपने मौत के करीब होने का फिक्र नहीं। आज हम बेरू हो गए, हमारी नमाजें बेरू हैं, हमारे रोजे तक बेरू हो गए। अल्लाह ताला कहते हैं देखो, और कुछ सुने भी तो कहते चलो देखते हैं, बोले कुरान क्या कहता है, हमने कौन सा मानना है, दिस एंड दैट। नुकसान क्या है कि छोटी सी चीज करीब होती है तो बड़ी चीज पीछे छुपती है। अल्लाह ताला वैसे ही लोग जो नबी सल्लम की इस दावत को सुनकर नॉन सीरियस लेते थे उनकी कुछ छुपी हुई बातों को कुरान में लाते हैं। वसरुन नजवल्लसीन जलमू, और जालिम आपस में सरशियां करते रहते हैं, क्या कहते हैं ये शख्स आखिर तुम जैसा ही तो एक बशर है, फिर क्या तुम आंखों देखे जादू के फंदे में फंस जाओगे? रसूल ने कहा मेरा रब हर उस बात को जानता है जो जमीन और आसमान में की जाए, वो समी और अलीम है। वो कहते हैं ये परागंदा ख्वाब है के, बल्कि ये तो इसकी मन घड़त है, बल्कि ये शख्स शायर है, वरना ये लाए कोई निशानी जिस तरह पुराने जमाने के लोग निशानियों के साथ भेजे गए। हालांकि इनसे पहले कोई भी बस्ती जिसे हमने हलाक किया ईमान न लाई, अब क्या ये ईमान लाएंगे? देखिए इनकी बौखलाहटें दिख रही हैं कि अल्लाह के नबी के बारे में जो नेगेटिविटी मुआशरे में फैलाई हुई थी ना, जितने मुतनी बात, कोई कहता ये शायर है, कोई कहता मजनू है। अब सवाल पैदा होता है कि अल्लाह के नबी को इतने मुख्तलिफ टाइटल क्यों दिए? क्योंकि अल्लाह के नबी उनको उनकी गफलत वाली जिंदगी से निकलकर एक शऊर वाली और एक मकसद वाली जिंदगी की तरफ दावत दे रहे थे, तो लोगों को अच्छा नहीं लगता। लोग कहते हैं हमें खुश रहने दो। आप इसको ऐसे सोचिए कि आपका बच्चा सो रहा है या आपके मियाँ सब सो रहे हैं और उनका सोने का मूड है। आप जाकर उनको हिलाएंगी ना उनको गुस्सा आएगा, लाइट जलाएंगी उनको गुस्सा आएगा, आप शोर करेंगी वो गुस्से में आएंगे, वो कहेंगे मुझे सोने दो। सेम यही चीज आप भी करेंगी, अगर आप सो रही हैं तो दूसरा उठाए। तो लोगों को सोना अच्छा लगता है। आप उन्हें कहते ना उठो उम्मत बन के जियो, वो कहते क्या मुसीबत है अब ये उम्मत उम्मत, बस नमाजें पढ़ी, इतनी महंगी इफ्तारी कराई लोगों की, अभी उम्रे का टिकट बुक कराए, अब ये उम्मत उम्मत की बातें लगा दी इन्होंने, हमें सोने दो। तो अल्लाह ताला कहता है कि फिर वो अपनी हिफत मिटाने के लिए, अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए नबी पर बातें करते हैं, और आज के दौर में ये दिन पे बातें करते हैं। तो अल्लाह अपने नबी को भी तसल्ली देते हैं और हर एक को उसको देते हैं जिसको दीन की वजह से लोगों ने बातें की। तुमसे पहले भी हमने इंसानों ही को रसूल बनाकर भेजा था जिन पर हम वही किया करते थे। तुम अगर इल्म नहीं रखते तो अहले किताब से पूछ लो। इन रसूलों को हमने कोई ऐसा जिस्म नहीं दिया ताकि वो खाते ना हो और ना सदा जीने वाले थे। यदि वो चाहते थे कि अल्लाह के नबी बिल्कुल एक कोने में बैठे हुए ऐसे बेजरर किस्म के लोग हों जो बैठ के तस्बीहों पढ़ते रहें और वजीफे करते रहें और ना खाएं ना पिए, जब अल्लाह के नबी को महफिलों में देखते, खाता पीता देखते, हंसता बोलता दिखते, कहते ये कैसा दीन है, तो अल्लाह करे बताओ कौन सा इंसान आज तक दुनिया में गुजरा जिसने खाया ना पिया ना हो। तो ये नबी तुम्हें खाने पीने से तो खुद भी नहीं रोकता, तुम क्यों सोचते हो कि इसको इस जिंदगी की सारी सरगर्मियों से दूर करके हम अपनी मौजें और मस्तियां कर ले। फरमा फिर देख लो आखिरकार हमने इनके साथ अपने वादे पूरे किए और उन्हें जिस जिसको हमने चाहा बचा लिया और हद से गुजरने वालों को हलाक कर दिया। लकद अनज़लना इलैकुम किताबन फीही ज़िक्रुकुम अफला ताकिलून। हाय लड़की, लोगो हमने तुम्हारी तरफ एक ऐसी किताब भेज दी जिसमें तुम्हारा ही जिक्र है, क्या तुम समझते नहीं हो। इतनी खूबसूरत आयत है। इंसान का नाम किसी चीज में छप जाए इंसान को वो बहुत अच्छी लगती है। अखबार में आपकी खबर छप जाए आप उस पर खुश होते हैं, लोगों को दिखाते हैं, कहीं आपकी सदर के साथ तस्वीर छप जाए आप बहाने बहाने लोगों से कहते अखबार पढ़ी थी, हाँ पढ़ी थी, नहीं आज अखबार पढ़ी थी, अखबार देखी थी, भी देखी थी क्या हो गया, वो मैं थी उसमें, तुम्हें मैं तो तुम्हें अभी भी देख रही हूँ, मेरे सामने जीती जागती तो मेरी उस तस्वीर से क्या हो। लेकिन इंसान को वो चीज अच्छी लगती है जिसमें उसका जिक्र है। ये कुरान इसका टॉपिक इंसान है। हमने अल इंसान के नाम पे एक पूरा दौरे कुरान किया था, यही आयत कोट की थी उसमें भी। हकीकत है कि हर किताब का एक टॉपिक होता है ना, इस कुरान का टॉपिक इंसान है, अल इंसान, जो कुछ हो। और ये किताब वक्त के साथ बड़ी होती है। बच्चों के लिए ये स्टोरी बुक है, जवानों के लिए ये बुक थॉट प्रवोकिंग है, और वक्त के साथ आप देखिए ये किताब बड़ी होती है। आप खुद देखिए, जो लोग कहते हैं हम कितने साल से दौरे कुरान कर रहे हैं, आज से 15 साल पहले अगर ये सिलसिला आपकी जिंदगी में शुरू हुआ तब भी ये कुरान था, आज भी यही है, क्या ये कुरान आपके साथ बड़ा हुआ? बिल्कुल हुआ। आज से 15 साल पहले हो सकता है आप बिल्कुल अर्ली टीन थे, यंग थे, जवान थे, वो तो आपको कैसा लगा? अब वक्त के साथ आपको मिसालें और एग्जाम्पल्स और जो रियल लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं वो दिखते हैं। तो ये किताब जिसको दे देंगे उसको समझ आएगी। आजकल देख हॉस्टलों में हमारे पास दौरे कुरान हो रहा है, मिनी दौरे कुरान। तो मैंने उनसे पूछा, ये इतना अच्छा उसका रिस्पॉन्स, पहली दफा शहर में लोगों को ये खबर मिली कि बच्चों का दौरे कुरान हो रहा है, तो वो उसका नाम ही मिनी दौरे कुरान है। तो मैंने उनसे पूछा आप लोग क्या कर रहे हो उसमें, मिनी दौरे कुरान पूरा कुरान बच्चों को पढ़ाएंगे? तो उन्होंने कहा नहीं, हमने सूरतें पे की पूरी सूरतों के नाम याद कराए और काफी अच्छे आइडियाज मुझे उनमें से मिले। तो कहने का मतलब क्या है कि जब हम अपने बच्चों को बचपन से इस कुरान से जोड़ देते हैं तो बड़े होने तक उनको ये समझ आ चुका होता है। तो इस किताब को पढ़ने से पहले ये किताब हमें पढ़ लेती है। एक रिवर्ट थे, उनका कॉल है कि इससे पहले कि मैं इस किताब को पढ़ूं ये किताब मुझ पढ़ लेती है। और हकीकत है कि ये किताब इंसान के साथ जज्बाती ताल्लुक रखती है। ये किताब समझ तब आएगी जब आपकी इसके साथ एफिलिएशन होगी, इमोशंस होंगे। प्यार से थामे इस किताब को, आप अपने सेलफोन से ज्यादा प्यार से थामे। इसका पेज पलटे तो आपको ऐसे लगे जैसे आपकी मनपसंद चीज है वो खराब ना हो। तो इस किताब को ना पढ़ के जिंदगी गुजारने वाले उसका हाल ये है कि बगैर मैनुअल खोले आपने मशीन यूज की और शुरू में आते ही उसको 220 के बजाय 420 पे लगाया और एक धमाका हुआ, बस्ट हो गई। आज इंसानियत बस्ट है। क्यों? कि वो किताब के बगैर जी रहे हैं। गैर मुस्लिम तो जिएंगे, मुस्लिम्स का भी हाल आज कुछ ऐसे कि वो बंद किताब की पैरवी कर रहे हैं। आप लाइए ब्लेंडर और उस बुकलेट को जो उसमें से निकला, उसको चूमें, चाटें, उसको खूबसूरत जूसदान में डाल दें, उसको किचन में एक बड़े अच्छे फ्रेम में लगा दें, क्या फायदा होगा? खोल के पढ़ेंगे तो बताएगी कि कैसे यूज करना है, तो हाउ टू हैंडल या हाउ टू यूज, बल्कि मैं अक्सर सोचती हूँ कि रीड मी बिफोर यूज। अक्सर चीजों पे लिखा होता है, ये कुरान भी कहती है, अमली जिंदगी का सफर शुरू करने से पहले इस किताब को पढ़ लो, फिर देखना तुम्हें अपने हर रूप और रिश्ते में इस किताब के मुताबिक अमल करना कितना आसान हो जाएगा। अल्लाह ताला आसान कर दे, और ये किताब जहन में आने वाले हर सवाल का जवाब दे रही है। इसको जब अपना समझेंगे तो इससे प्यार आएगा। अल्लाह ताला कहते हैं इसमें तुम्हारे मसाइल का हल है इसमें, लेकिन जो लोग इस किताब को नहीं पढ़ते उनका हाल क्या होता है। वकम कसम न मिन करियत कानत जालिमा, कितनी ही जालिम बस्तियां हैं जिनको हमने पीस कर रख दिया और इनके बाद दूसरी किसी कौम को उठाया, जब इनको हमारा अजाब महसूस हुआ तो लगे वो भागने। अब इमेजिन करें, कोई झलकी टेलीविजन पे आपने जलजले की देखी हो, सुनामी की देखी हो, कैटरीना की हो, कोई भी किसी किस्म की ऐसी आसमानी आफत जब आती है तो उस वक्त लोग कहाँ जाते हैं। इसके तर्जमे के ऊपर सिर्फ गौर कर लेंगे ना तो ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपकी एक खसूसी तवज्जो चाहिए। फिर पढ़ूंगी शुरू से। कितनी ही जालिम बस्तियां हैं जिनको हमने पीस कर रख दिया और इनके बाद दूसरी किसी कौम को उठाया, जब इनको हमारा अजाब महसूस हुआ यानी वो झटके आने लगे तो लगे वहां से भागने। कहा गया भागो नहीं, जाओ अपने इन्हीं घरों और ऐश के सामानों में जिनके अंदर तुम चैन से रह रहे थे, शायद कि तुमसे पूछा जाए। फिर क्या बोले, सोचिए उनके जुमले, कालू या वैलना इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन, कहने लगे हाय हमारी कमबख्ती, बेशक हम खताबार थे। किसी ने ये नहीं कहा कि इन्ना कुन्ना गाफिलीन, हम भोले थे, गाफिल थे, हमें पता नहीं, हम जालिम थे। यानी सब पता था कि कैसे जीना है लेकिन हम अपनी मर्जियों से जानते थे। फिर क्या हुआ, अजाब और करीब आया, फमा जालत तिल कदावा हम हत्ता हत्ता जालना हम हसीदन खामिदीन, और वो यही पुकारते रहे यहां तक कि हमने इनको खिलियान कर दिया और जिंदगी का एक शरारा तक इन्हें न रहा। इनकी जिंदगियों के चिराग बुझ गए। कितना बोलते थे अल्लाह के खिलाफ, कितना बोलते थे मौलवियों के खिलाफ, और कितना बोलते थे इस्लाम के खिलाफ, आज बुझ कर रह गए, आज बुझ कर रह गए। सोचने की बात है, हम सब अपने आप को देखें कहीं हम ऐश में तो नहीं पड़े हुए। ऐश से मुराद क्या कि बेमकसद जिंदगी, बेकार जिंदगी, हर दिन हमारी जिंदगी की किताब में से एक सफा मिटा दिया जाता है और हम मौत के करीब होते हैं। इस एहसास के साथ जीना और इसके बगैर जीना, ये दो मुख्तलिफ जीने हैं। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारी गफलत को दूर कर दे। इसीलिए अगली आयत में मकसद जिंदगी, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, वमा खलकना समा अलर्त वमा बैनहुमा लाइबीन, हमने इस आसमान और जमीन को और जो कुछ इनमें है कुछ खेल के तौर पर नहीं बनाया। अगर हम कोई खिलौना बनाना चाहते और बस यही कुछ हमें करना होता तो अपने ही पास कर लेते, यानी क्या जरूरत थी इतनी बड़ी दुनिया बनाने की। मगर हम तो बातिल पर हक की चोट लगाते हैं जो इसका सर तोड़ देती है और वो देखते देखते मिट जाता है, और तुम्हारे लिए तबाही है इन बातों की वजह से जो तुम बनाया करते हो। आप देखिए कि कैसी बातें थी। आज भी अगर आप इस आयत पर गौर करके देखें ना तो यहाँ ये जो लफ्ज है ना, फयद मगहूद, दिमाग लफ्ज इसी से, दिमाग ब्रेन। अल्लाह ताला ने हम सबको कहा कि अपना ब्रेन यूज करो, और बंदे की कोशिशें किस मकसद के लिए लगे कि बातिल पर हक की चोट। दुनिया में जहां आपको बातिल दिखे, गलत चीजें हैं, गलत रस्में, गलत तरीके हैं, अल्लाह की नाफरमानी, वहां जाके हक बात करें, और हक को ऐसे खूबसूरत तरीके से रखें कि बातिल का दिमाग निकल जाए, भेजा निकाल दो इस बातिल का। क्यों? इसलिए कि मुसलमानों को अल्लाह ताला ने दुनिया में यही काम दे के भेजा है, कुंतुम खैरा उम्मतिन। आप देखिए कि माजी में भी मुसलमानों के खिलाफ लोगों ने बातें की, औरतों के बारे में बातें की, लेकिन मुसलमान गुस्सा नहीं करते बल्कि वो दलील के साथ जवाब देते थे। एक मौके पे एक शख्स ने किसी मुसलमान स्कॉलर से कहा, अच्छा जी वो आयशा जिस पर इल्जाम लगा था, यानी हजरत आयशा की, कहा तुम्हारा नबी वो है जिसकी बीवी पे जिना का इल्जाम लगा था, नाउज बिल्ला। अब आप सोचिए, हम होते तो काम करते, गुस्सा करते, मुक्का मारते, थप्पड़, ये क्या किया, गुस्ताखी की? नहीं, ठंडा दिमाग ठंडा रखिए। हाँ जी, बड़ा खूबसूरत जगह, कहने के हाँ वाकई दुनिया की दो बड़ी खूबसूरत औरतों पे इल्जाम लगा, एक को अल्लाह ने बेटा अता कर दिया बीबी मरियम, और दूसरे को अल्लाह ताला ने उसकी कुरान में बेगुनाही की आयतें उतार दी, आयत बरात सूरत नूर की आयतों की तरफ इशारा था, यानी उसको चुप करा दिया कि अगर आयशा पे इल्जाम लगा तो बीबी मरियम पे भी तो लगा था जिसके तुम पैरोकार हो। आज इस दलील के साथ बात करने की जरूरत, और अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए कि हम हक बातिल रहें, जिंदगी को मकसद के साथ रहेंगे, और मकसद ये है कि जो इस दुनिया में करो उसको आखिरत की नजर से देखो, जो कर रहे हो एक लम्हे के लिए सोचो कि इसका अंजाम क्या होगा, इसका एंड रिजल्ट क्या है, और इस तरह से इंसान अपने आप में करके देखेगा तो अल्लाह ताला खुद ब खुद उसके लिए आसानियां करेंगे। वलहू मन फिस समावाति वल अर्ध, आसमान और जमीन में जो मखलूक भी है वो अल्लाह की है, और जो फरिश्ते इसके पास है ना वो अपने आप को बड़ा समझ कर इसकी बंदगी से पुं फेरते हैं और न वो थकते हैं, शब व रोज इसकी तस्बीह करते हैं और दम नहीं लेते। क्या इन लोगों के बनाए हुए दुनियावी खुदा ऐसे हैं कि बेजान को जान बख्श कर उठा खड़ा करते हों? अगर आसमान और जमीन में एक अल्लाह के सिवा दूसरे खुदा भी होते तो जमीन और आसमान दोनों का निजाम बिगड़ जाता। सच है ना? एक गाड़ी में दो ड्राइवर बिठा दीजिए, एक खाना पकता और दो लोग चमचे मारने लग जाएं तो इंतजाम बिगड़ जाए। इतनी बड़ी दुनिया जिसमें आप देखिए कोऑर्डिनेशन कितनी है। बस अगर आप देखिए आसमान का खुदा और होता, जमीन का नीचे का और होता। अब मिसाल लेते हैं बादलों की, बादल बनते कहाँ हैं? नीचे जमीन से पानी जाता है। अब जमीनी खुदा जो होता उसके अंडर में समंदर था, ठीक है, फिर वहां से वेपोरेशन होती, बखार आ जाते तो ऊपर आसमान पे जाके क्लाउड बनते हैं। दोनों की आपस में लड़ाई होती, कभी दुनिया को बारिश मिलती? वो तो लड़ लड़ के रह जाते, दोनों लड़ते दोनों को कुछ ना मिलता। तो अल्लाह ताला कहते हैं नबी से कहो लो अपनी दलील, ये किताब भी मौजूद है जिसमें मेरे दौर के लोगों के लिए नसीहत है, और वो किताबें भी मौजूद हैं जिनमें मुझसे पहले लोगों के लिए नसीहत थी, मगर इनमें से अक्सर लोग हकीकत से बेखबर हैं, इसीलिए मुंह मोड़े हुए हैं। हाईलाइट कर रहे, अक्सरियत मुंह मोड़े हुए हैं, अल्लाह हमें उनमें ना करे। हमने आपसे पहले जो रसूल भी भेजे उनको यही वही कि मेरे सिवा कोई खुदा नहीं, बस तुम मेरी बंदगी करो। ये कहते हैं रहमान औलाद रखता है, सुभान अल्लाह, वो यानी फरिश्ते तो बंदे हैं जिन्हें इज्जत दी गई, इसके हुजूर भड़कर नहीं बोलते और बस इसके हुक्म पर अमल करते हैं। जो कुछ इनके सामने है इसे भी वो जानता है, और जो कुछ इनसे ओझल है इससे भी वो बाखबर है। वो किसी की सिफारिश नहीं करते सिवाय इसके जिनके हक में सिफारिश सुनने पर अल्लाह राजी हो, और वो इसके खौफ से डरते रहते हैं। सोचिए, क्या मैं अल्लाह से डरती हूँ? क्या मैं भी फरिश्तों की तरह खौफजदा? अब देखिए, ना फरिश्तों के लिए कब्र है, ना हशर है, ना जहन्नम ना जन्नत, लेकिन वो अल्लाह की शान जानते हैं ना, तो अल्लाह की मेजेस्टी के आगे कांपते हैं। हमारा हाल ये कि हमें पता है कि जन्नत या जहन्नम है, हमें पता है पुल सरात आने वाला है, हमें पता है मैदान हशर में मारे जाएंगे, परेशान होंगे, लेकिन हम फिर भी नहीं खौफजदा, क्योंकि अल्लाह की कदर नहीं है। हिसाब किताब की बात नहीं होती। कुछ लोग बड़े लोग होते हैं, उन्होंने हमसे कुछ नहीं पूछना होता, लेकिन उनका एक रोब होता है दिलों पे, उनको देखकर लोग एकदम सीधे होने लगते हैं। क्या अल्लाह का रोब है हमारे दिलों में? क्यों जन्नत जहन्नम सब जानने के बावजूद भी मैं नहीं अल्लाह के बारे में सोचती, उसकी नाफरमानी से नहीं रुकती? वजह सिर्फ पीछे ये कि अल्लाह की वो कदर नहीं। तो दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारे दिल में अपनी कदर बढ़ा दे और हम तुझे बाकी बड़ा समझ सकें। फरमा, क्या ये वो लोग हैं जिन्होंने नबी की बात मानने से इनकार कर दिया? गौर नहीं करते कि ये सब जमीन और आसमान तो पहले बाहम मिले हुए थे, फिर हमने इनको जुदा किया और पानी से हर जिंदा चीज पैदा की। आज देखिए साइंस ये चीज साबित की है जो 1400 साल पहले कुरान में थी, कि हर बड़ी चीज पानी से पैदा की गई। और आप नोट कीजिए, पानी दुनिया में एक बहुत बड़ा ऐसा सोर्स है कि जिसके साथ जिंदगी होती है। इंसान खाए बगैर जी लेता है, लेकिन पिए बगैर जीना मुश्किल होता है। फरमाए, क्या वो हमारी इस खल्लाकी को नहीं मानते? और हमने जमीन में पहाड़ जमा दिए ताकि वो इनको लेकर ढुलक न जाए, और इसमें कुशादा राहें बना दी शायद के लोग अपना रास्ता मालूम करें, और हमने आसमान को एक महफूज छत बना दिया, मगर ये है कि कायनात की निशानियों की तरफ तवज्जो ही नहीं करते। और वो अल्लाह ही तो है जिसने रात और दिन बनाए और सूरज और चांद को पैदा किया, सब एक फलक में तैर रहे हैं। फमा जालना लिबशर मिन कब्लिकल खुल्द, और नबी हमेश की तो हमने आपसे पहले भी किसी इंसान के लिए नहीं रखी। कोई अगर हमेशा रहता तो अल्लाह का नबी रहता। कुल्लु मन अलैहा फान, हर एक को जाना है, इसीलिए फरमा दिया फाइन मित तफहुमुल खालिदून, अगर तुम मर गए तो क्या ये लोग हमेशा जीते रहेंगे? यानी ये कौन थे जो आपके मरने की दुआएं कर रहे थे? नाउसुबिल्ला, कहते थे इन्होंने हमारा जीना दोबर किया हुआ है, मुश्किल है, हर वक्त बातें बातें बातें, चलो कोई नहीं, जब इनको दुनिया से जाना है फिर हम इसके बाद अपनी मस्तियां करेंगे। तो अल्लाह कहते हैं आपकी मौत के रास्ते देखने वाले, क्या इनको खुद नहीं पता कि इनको भी मरना है? हर एक को मरना है। और बात यह कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हाईलाइट कीजिएगा, हर जानदार को मौत का जायका चखना है। दुनिया में क्या हो रहा है? वनब्लूकुम बिश्शर्रि वल खैरि फितना, हम अच्छे और बुरे हालात में डालकर तुम सब की आजमाइश कर रहे हैं, आखिरकार तुम्हें हमारी तरफ पलटना है। ये है जिंदगी। देखिए, जिसको ये यकीन आ जाए ना कि मैंने मौत का जायका चखा है, फिर वो दुनिया में ना फरमानियों के जायके नहीं चखेगा, हराम के जायके नहीं चखेगा, मुश्तबे चीजों के जायके नहीं चखेगा, एक जायका चखेगा, कुरान का जायका, जिसमें अल्लाह की इताअत का रंग है, जिसमें सिफत अल्लाह का रंग है, जिसमें हकीकत अल्लाह का बनने का रंग है। और जितना जिंदगी में कुरान का मजा चखा होगा ना, उतनी मौत की कड़वाहट कम होगी, और जितनी जिंदगी गुनाहों की कड़वाहट के साथ गुजरी होगी, मौत का जायका कड़वा होगा। इलैना तुरजाओ, आना तो हमारी तरफ, कब तक खैर बनाओगे, कब तक नो कहोगे, कब तक सर फेरोगे? जिस दिन हमारे सामने आओगे लग बता जाएगा। और ये भी बता दिया कि अच्छे और बुरे हालात दोनों इम्तिहान के पर्चे, जैसे उर्दू इंग्लिश पढ़ते हैं ना, इस तरह दुख सुख पढ़ते हैं। दुख में भी आजमाइश है, सुख में भी आजमाइश है। दुख में पास हो जाते हो, सुखों में क्या हो जाता है? फिर क्यों अल्लाह की नाफरमानियां करते हो? फरमाइए, मुनकरीन हक जब तुम्हें देख लेते हैं तो तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं क्या ये है वो शख्स जो तुम्हारे खुदाओं का जिक्र किया करता है, और इनका अपना हाल ये है कि रहमान के जिक्र से मुनकर है। याद रखिए, दीन के लिए मजाक उड़वाना, यानी आप दीन पे अमल करेंगे और मजाक उठेगा। आप कोई भी सोच ले, चलिए आम बातें तो दाढ़ी नहीं है ना, आपके मर्द ने दाढ़ी रखी, लोगों ने मजाक किया, ये क्या पहना हुआ है, ये क्या बिब लगाया हुआ है, आपने हिजाब पहन लिया, लोगों ने मजाक उड़ा लिया, आप कुछ वक्त से उठे, आपने कहा नहीं मुझे तो नमाज पढ़नी, हो कहते ये क्या नमाज है, उठो नमाज है। अब ये दीन के लिए जो मजाक उड़ाने हैं ना, लिख लीजिए, ये इज्जत का सदका है। हम माल सदके में देते हैं ना, कपड़े भी देते हैं, खाना भी देते हैं, अल्लाह ताला कहते हैं अपनी इज्जत का सदका करो, स्टेटस का सदका करो। और ये ऐसे टेस्ट है, लिटमस टेस्ट होते हैं ना, जब साइंस में आप करते हैं, जब तक दीन की बात करने पर, अल्लाह के दीन पे, अल्लाह के हुक्म पे अमल करने पर रिएक्शन नहीं शो हो, तो समझिए वो हक नहीं है। हक की पहचान ही है, सच की पहचान के जो ही आप उसको अपनाएंगे, आपको लोग बुरा भला कहेंगे। आप नमाज के साथ तस्बीह नमाज जो, तस्बीह नमाज के साथ आप सलातो तौबा पढ़े, रात पूरी सो नफिल पढ़े, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा, बल्कि ये कहेंगे बहुत अच्छा काम करते हो बेटा। जो ही आप अपने आप को थोड़ा सा अल्लाह के रंग में रंगेंगे, 10 लोग पूछेंगे क्या हो गया, क्या फर्क पड़ता है, सोच लो, घबराहट होगी, दिमाग चला जाएगा, माइग्रेन हो जाएगा, तुम्हें आईना इसमें रोक लेंगे, ये होगा वो होगा, तो अल्लाह ताला कहते हैं ये तो होगा, और नबी का हुआ, इसलिए किसी और की क्या बड़ी बात है। इसलिए फरमा दिया, क्या कहते थे अल्लाह के नबी को देखकर, कहते हैं क्या ये है वो शख्स जो तुम्हारे खुदाओं का जिक्र करता है, और इनका अपना हाल ये है कि रहमान के जिक्र से मुंह फेरे हुए हैं, ये रहमान के जिक्र से भी मुनकर है। बात ये खुली कल इंसान मिन अजल, इंसान बहुत जल्दबाज मखलूक है, इसीलिए तो आजीला चाहता है ना, पीछे सुन चुके हैं सूरत बनी इसराइल में, आजीला दुनिया चाहता है। रिवायत में आता है कि जब आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बना, अभी उनकी रूह जो थी वो उनकी टांगों में, कि उन्होंने उठ के बैठना शुरू किया, कि इंसान दुनिया के फायदे जल्द लेना चाहता है। अल्लाह कहते हैं सऊरी को मायाती फला तस्ताजिलून, अभी मैं तुमको अपनी निशानियां दिखाई देता हूँ, मुझसे जल्दी ना मचाओ। ये लोग कहते हैं आखिर ये धमकी कब पूरी होगी, अगर तुम सच्चे हो, काश इन काफिरों को इस वक्त का कुछ इल्म होता, जबकि ये ना अपने मुंह आग से बचा सकेंगे ना अपनी पीठें। सोचिए, मुंह पे आग पड़ेगी ना तो पलटेंगे, पीछे की तरफ करेंगे तो आग पीठ पे आग लग जाएगी, और ना इनको कहीं से मदद पहुंचेगी, वो बला अचानक आएगी और इन्हें इस तरह यकलक दबोच लेगी कि ये ना इसको दफा कर सकेंगे और ना इनको लम्हा भर मोहलत ही मिल सकेगी। मजाक तुमसे पहले भी रसूलों को उड़ाया जा चुका, मगर इनका मजाक उड़ाने वाले इसी चीज के फेर में आकर रहे जिसका वो मजाक उड़ाते थे। देखिए, कभी अल्लाह ना करे किसी को आग लगे, जब आग लगती है ना, इंसान चेहरा बचाते पीछे जाता है, पीछे से दूसरा, सुनते ही रहते होंगे आप इस किस्म की खबरें, आग लग गई मर गए, आग लग गई ये हुआ। आप देखिए कि दुनिया में आग से हम कितना डरते हैं, आप अक्सर कीजिए, अभी भी आपके सामने एग्जिट लिखा होगा, इधर भी लगा होगा, इस बिल्डिंग की मेरा लेकर 20, 30, 40 रिक्वायरमेंट्स होंगी गवर्नमेंट की तरफ से, अगर आप इसको एक स्कूल के तौर पर यूज करते हैं, राइट? और अक्सर के पीछे वजह के, इस रूम की कैपेसिटी लिखी होगी, वजह क्या, इन केस ऑफ फायर। अक्सर आप देखें जहाज में बैठते हैं, इन केस ऑफ इमरजेंसी, इन केस ऑफ, इंसान के लाशौर में आग का खौफ है, तो क्या जहन्नम की आग का खौफ नहीं है? अल्लाह अजिरना मिनन नार, अल्लाह ताला हम सबको आग के अजाब से बचा दे। ए नबी इनसे कहो, कौन है जो रात को या दिन को तुम्हें रहमान से बचा सकता हो, मगर ये अपने रब की नसीहत से मुंह मोड़ रहे हैं, क्या ये कुछ ऐसे खुदा रखते हैं जो हमारे मुकाबले में इनकी हिमायत करें? वो तो ना खुद अपनी मदद कर सकते हैं, ना हमारी ही ताई इनको हासिल है। असल बात है कि इन लोगों को और इनके आबाओ अजदाद को हम जिंदगी का सरो सामान दिए चले गए, यहाँ तक कि इनको दिल लग गए, हाईलाइट करें। ये वजह, जब दो चार नस्लों में दौलत चलती रहती है ना तो आंखें बड़ी हो जाती हैं, फिर अल्लाह को ना भूल कर अपने आप को बड़ा समझता है, मगर कहीं को नजर नहीं आता कि हम जमीन को घटाते ही चले जा रहे हैं। क्या फिर ये गालिब आ जाएंगे? इनसे कह दो मैं तो वही की बिना पर तुमको आगाह कर रहा हूं, मगर बहरे पुकार को सुना नहीं करते जब तक कि इनको खबरदार कर दिया जाए। यहां देखिए बड़ी अहम आयत है, ये सूरह रात में भी आती है, इसी से मिलती हुई, कि अन्ननात अलअर्द ननकुसहा मिन अतराफिया। जमीन को घटाने से क्या मतलब है? एक तो इसको अगर साइंस की रोशनी में ले लें तो कहते हैं कि दिन ब दिन जमीन पे पानी भरता जा रहा है और खुश्की कम हो रही है। किसने बताया 1400 साल पहले? जिसने इस दुनिया को बनाया। फिर इसी तरह जमीन को घटाने का एक और मफहूम लिया गया कि कुफर कम हो रहा है और इस्लाम आ रहा है। और ये कब हुआ था? जब अल्लाह के नबी के बाद सहाबा गलबा था कि दिन ब दिन दुनिया में इस्लाम फैलता आ रहा था, वो भी था। लेकिन अगर देखा जाए तो हम सब के साथ यही हो रहा है, वक्त के साथ साथ हमारी हर चीज घट रही है। हुस्न घट जाता है, सेहत घट जाती है, कोई चीज पहन ले तो सजती नहीं है, जेवर पहन ले तो कानों में दर्द है, बुंदे हैं, और फिर एक वो वक्त आती है कि सुनने के लिए भी आले लगाने पड़ते हैं, देखने के लिए आले लगाने पड़ते हैं। कभी बड़ी उम्र के लोगों को देखे शादी की तैयारियों में कहीं जा रहे हैं, चलो अम्मा आप भी चले अच्छे कपड़े पहने, मेरी अम्मा पहले अपनी अलग ढूंढेगी, ग्लासेस की तरह मस्कारा कैसे लगाए वो अम्मा, और वो फाउंडेशन कैसे लगाए बेटा, देखो ठीक है। ये घट गई हर चीज, अपने ऊपर लेकर सोचे, हम सब हमेशा जवान नहीं रहेंगे। कभी आप अपनी माँ की कोई तस्वीर अगर आपके पास है तो उनके अंदर अपना रूप देखें, नानी है तो उसमें माँ का अगला वक्त देखें। हम में से हर एक हट रहा है। फिर एक वक्त आता है वो बड़ा घर जो 1000 गज का था वो छोटा होता है, कहते नहीं मेरे से ऊपर नहीं जाया जाता, मैं 1 महीना हो गया ऊपर नहीं गई, बस एक नीचे ठीक है, और इतने बड़े घर से निकाल कर हमको एक छोटी सी कब्र में डाल दिया जाएगा। हम सब घट रहे हैं। अकलमंद वो है जिसको रियलाइज करे, अपनी उम्र को पहचाने और उसके तकाजों को पहचाने। बस जब हम अपनी उम्र को घटाने की ख्वाहिशात में कभी बाल रंगते हैं, कभी चेहरे को कुछ करते हैं, कुछ नतीजा क्या होता है कि हम बाहर जवान लग रहे हैं अंदर कमजोरियां आई हुई हैं। फिर बहुत खिदमत ना करे, कहते हैं आज की बच्चियों को तमीज ही नहीं, पहले आप खुद उसकी सहेली बनी, बाद में उसने जरा बेतकल्फी में कुछ कह दिया, आप कहते जी इज्जत नहीं करती, खिदमत नहीं कर, वो कैसे करें, आप तो उनको अपने से भी जंग दिख रही है। शादी बेटे की बाल अपने कटवा लिए कि अब मैं उम्र की जरा छोटी लगू, दादी बन गए तो तौबा करें और ही ना मुश्किल में आ जाए। तो रियलाइज कीजिए जिंदगी का हुसन आपकी उम्र के साथ है। बच्चा बड़े वाली बात करे तो अच्छा नहीं लगता, तो बड़ा अगर बच्चों वाली बात करे तो अच्छा नहीं लगता। इस तरह जवान बूढ़ा बन जाए, जवानी में आपको शौक ही कोई नहीं और आप मुर्दा बैठे हैं तो भी कोई खुशी की बात नहीं। और इसी तरह से हर दौर में दिल खुश रखें अपना, लेकिन अपने उम्र के तकाजे रखें। लेकिन ये सच कि हम सब का इस दुनिया में अब वक्त कम हो रहा है, और अल्लाह ताला हमें इसको सही तरीके से इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमाए। वलैन मस्सतहुम नफखतु मिन अज़ाबि रब्बिक, और अगर तेरे रब का अज़ाब जरा सा छू जाए इनको तो भी ये चीख उठेंगे कि हाय हमारी कमबख्ती, बेशक हम खताकार थे, क्यामत के रोज हम ठीक ठीक तोलने वाले तराजू रख देंगे, फिर किसी शख्स पर जरा जुल्म न होगा, जिसका राई के दाने बराबर भी या कुछ होगा वो हम सब सामने ले आएंगे, और हिसाब लगाने के लिए हम काफी हैं। हाईलाइट करें, खौफ आता है ऐसी आयतों को पढ़ते हुए। वनदाउल मवाजीन अल किस्त लियौमिल कियामा फला तुज़लमु नफ्सुन शैया वा इन काना मिसक़ाल हब्बतिन मिन खर्दल अतैना बिहा। अतैना बिहा बड़ा खौफनाक है, सब कुछ खोल कर सामने ले आएंगे। सख्त मामला है हर चीजें, अल्लाह ताला छोटी बड़ी नेकी, दिल के इरादे, ख्वाहिशें, बातें, सब कुछ लाकर अल्लाह पेश करेंगे। वह कफा बिना हासिबीन, हम हिसाब लगाने के लिए काफी हैं। अल्लाह हमें अपनी अंदर की क्लीनिंग करने की तौफीक दे, जुबान की, दिल की, आंखों की चोरियों से अल्लाह बचा, क़यामत के दिन हम कहीं शर्मसार ना होने लगे। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे। पहले हम मूसा और हारून को फुरकान और रोशनी और जिक्र अता कर चुके हैं, इन मुत्तकी लोगों की भलाई के लिए जो बिन देख अपने रब से डरे और जिनको हिसाब की इस घड़ी का खटका लगा हो। और अब ये बाबरकत जिक्र है, हाईलाइट कीजिएगा, वहाजा जिक्र मुबारक अनज़लनाहू अफअंतुम लहू मुनकिरून। अब ये बाबरकत जिक्र हमने तुम्हारे लिए नाज़िल किया, फिर क्या तुम इसको कबूल करने से इनकार करते हो? जवाब दीजिए, क्या आपको मुझे इस किताब की बरकतें अपनी जिंदगी में महसूस हो रही हैं? आप में से जो फर्स्ट टाइम इस साल दौरे कुरान सुन रहे हैं, क्या वो इस बात की गवाही देंगे पहले जब दौरे कुरान नहीं सुनती थी तो इस वक्त सो रही होती थी, रिलैक्स्ड होती थी, लेकिन जिस्म में थकन तकलीफ। क्या आज आप इस पारे को सुनने के बाद बाकी दिन अपने अंदर एनर्जी नहीं पाते? अल्हम्दुलिल्लाह, कौन गवाही देता है इसकी। अल्लाह से दुआ करते हैं कि ये एनर्जी हमारी जिंदगी भर की एनर्जी बन जाए, फिर देखिए बरकतें। हकीकत है ये किताब बरकतों वाली है, जहां रखी वहां बरकत होगी। जिस शहर में उतरी वो मक्का बन गया, जो नबी इसको लेकर आया वो जिब्रील अमीन कहलाया, जिस हाथ ने इस किताब को थामा ने उसको बरकतें दे दी। आज भी ये किताब बरकतों वाली किताब है। आज उम्मत मुस्लिमा ने इसकी बरकतें खुद समेटी हुई हैं। आज आप दूसरी चीजों को बढ़ाने की बजाय कुरान को बढ़ा दें, उम्मत मुस्लिमा की बरकत पूरी दुनिया में फैल जाएगी और अल्लाह ताला हमें इसका जरिया बना दे। हकीकत में अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ रखा है, बरकत दे।